सबसे ज्यादा अमल के बारे में जो फिक्र की बात है वो ये है कि अपने अमल को कबूल कराने की फिक्र बने मेरा अमल अल्लाह के कबूल हो। इसलिए अगर अमल किया कबूल न हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ बल्कि ये अमल उसके बबाल बनेगा। ये हम सबकी फिक्र की बात है कि हम अपनी आखिरत के सामने रखने के बारे में रोजाना अपना हिसाब और मुहासब करें अपनी जात के बारे में। सहाबा और जवाबदेही आपस में एक दूसरे से मिलते थे तो यही कि खांसी को पकड़ मुहासब हो अपना जमा हर का हिसाब खुद करो इससे कि पहले अल्लाह के यहां तुम्हारा हिसाब दिया जाए। हजरत साहब को मैं हरेक को यही फिक्र रखी की रही है शायद ये हदीस ही है वक्त सिलामत फैन अल्लाह के तबसी हम पहले हदीस सुना करते थे वातावरण से कि अपने अमल को इखलास के साथ करो इसलिए कि जो परखने वाला है वो बहुत बारीकी से देखने वाला है अल्लाह ताला शानों में। मसला मेरा आप काबू करनी है मेरा अल्लाह के साथ है मामला और अल्लाह ताला शानों हरेक से हिसाब तो देगा अपने हक के बारे में भी देगा और मखलूक के हकूक के बारे में भी हिसाब देगा। ये उसकी अफर गर्व का मामला है जैसा शेख ने अल्लाह की किताब में लिखा है कि कयामत के दिन अल्लाह ताला अपने हक के बारे में तो अपनी माफी का दरवाजा खोल देगी मैं माफ किया गया लेकिन मर्दों के हकूक के बारे में अल्लाह ताला दे रही है कि मजलूम के हकूक के बारे में तो बदले कहा है। इस बारे में हम और उम्र के दुश्मनों हकूक और लिबास के बारे में बहुत कोताही है इसी में भाई के अजीज लोग मौत का आना बता भी है कब आ जाए किस वक्त आ जाए। अभी हमारे सामने लोग आ गया है एक हमारे पाकिस्तान सूरतों का इस्तीफा में आए हुए में आए थे और दुआ कि इस्तीफा हो गया। अभी हमारा मोहम्मद नबीम हमारे साथ हमारे सबों हमारे साथ थे वो बहरी दिन तक और मेरे दोस्तों इस्तीफा हो गया उनका तो ये तो मेरे दोस्तों मौत को अपने ऊपर आएगी और ऐसी मौत से पता मांगी है जो अचानक आ जाए मौत महंगी आहूरी मौत जाती मौत जिसमें ہونے ہوا ہے. اللہ نے آپ کو بھی اچانک کی موت کا پرسنام نہیں اسی لیے جس کو جو بھی وہ غنیمت ہے اس کا آدمی اپنی موت کو بات نہیں کر رہے. ہاں دعوت کی محنت بھی اپنی ذات کے لیے ہے اگر چیزیں خوشوں میں خوشوں میں تمام کے لیے یہاں پیدا آدمیوں کو دورے میں لگتا ہے دوسروں کی بھی تو بدلتا ہے. حالانکہ دعوت کی محنت کا مقصد ہی اپنی ذات ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ دین کی محنت کرنے کے بارے میں اللہ کا فرمان بھی ہے کہ جو دین کی محنت کرے گا میں اس کو ہی محنت کروں گا. ہمارے ساتھی اپنے کو بھول کر لوگوں میں محنت کرتے ہیں دوسروں کے لیے دوسروں کو بھیجا دیا جائے اور یہ دنیا پر محنت کر رہے ہیں تو یہ ہمارا بہت بڑا بھائی نقصان ہے. اس لیے کہ محنت کرنے پر دوسروں کو بھیجا دینے کا وعدہ زیادہ نہیں ہے. جو محنت کرے گا اس کو بھیجا دینے کا خدا کا وعدہ ہے. اور لیکن اجا اسی نا بڑا دین نہ ہو جو محنت کریں گے ہم بھیجا دیں گے ہم جو محنت کر رہے ہیں اللہ نے ہم کو لگایا ہے وہ تو ہمارے اپنے بھی ہدایت کا ہے اور ہم کی نیت میں بھی نہیں کرتے دوسروں پیش کرتے ہیں دوسروں کی گھرے میں لانا ان کو لانا ان کو لانا ہے. حالانکہ محنت تو اپنی ذات کے لیے ہے. ہم ایک زمانے میں شروع تھے زمانے میں یہ بات راہوں سے سنتے تھے گش پہ جا کر لوگوں کو اس کامل ایمان کی دعوت دی جائے جو کامل ایمان صحابہ کے پاس تھا تاکہ ہمارا ایمان کامل ہو. گش پہ جا کر جو بات کرے گا لوگوں سے وہ بات کرنے والا بات کرنے سے پہلے یہ اپنی نیت بنا ہے کہ میرے پاس کامل ایمان نہیں ہے مجھے اپنا کامل ایمان چاہیے اور اس ایمان کے کمان کے لیے میں دوسروں کو کامل ایمان کی دعوت دے رہا ہوں جو وقت بتا گیا تاکہ اللہ مجھے وہ ایمان دے دے. مجھے دلاتی کا کمان کرتے تھے کہ جو تم بیچ میں جا کر دعوت نماز ہی دیتے ہو تو کون سی نماز ہے وہ نماز تو ہم پڑھتے کرنا وہ اللہ کی نبی والی نماز کی دعوت بنا دی تاکہ ہماری نماز اللہ ایسی بنا دے. اس لیے کہ دونوں کے بارے میں سبھی اللہ کی تراضی ہے. ایمان کے بارے میں تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ جو میرے نبی کے صحابہ کا ایمان ہے. ریز آپ کی نوران کما امن اللہ سے مراد صحابہ بھی عمر جماعت ہے اور صحابہ ہی معیار حق ہے. صحابی معیار حق ہے اللہ نے مہربانی کے لیے ان کو معیار حق بنایا ہے. تو جو ایمان کی روپے صحابہ کرتا وہ ایمان کی روپے ہمارے پاس آنا چاہیے. اس کے بارے میں پرواز صاحب رحمۃ اللہ میں جاتے تھے تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ سے اتنا مانگو تو اس صحابہ کو بدل دیا وہ ایمان وہ تقوا ہو تو فکر اللہ کے قربانی کے لیے غوث سے دے جو کچھ اللہ نے صحابہ کو دیا تھا وہ اللہ ہمیں وہ دے. اور یہ فرماتے تھے اللہ کے سردانے میں کمی نہیں ہے. ہاں کہ صحابہ کو دے دیا تو خزانہ ختم ہو گیا وہ ایمان مانگ اللہ سے کہ وہ ایمان دے اور ہم اس دعوت کی محنت سے اسی ایمان کے کو مقصد بنا کر رہے ہیں کہ وہ ایمان اللہ ہمیں دے دے. اور یہ باتیں ہم اپنے ساتھیوں سے منصوبہ جمع کے ساتھ ملا کر کریں گے کیسے دیں گے करने के वक्त में भी गरीब की बात करने वाले कदम नहीं है, हम उसी देश पर जा रहे हैं ताकि अल्लाह हमारी तरह बना ले। आजकल हम इस महिलाओं बातों को भुला चुके हैं। राम से जो अजमाइया था बड़े आगे थे, इसलिए जाओ तो नमाज की बुजुर्ग ने उम्र से कौन सी नमाज का मुताबा किया है? सल्लू कमर आयत मूली और चल रही, जैसी मैं नमाज पढ़ता हूं मुझे देख कर नमाज पढ़ता हूं वो नमाज पढ़ो। और इब्राहिम साहब जो अफराद भी तीसरा नंबर के ऊपर बता रहे थे, कह रहे हो वो हमारे अंदर की कमजोरियां हैं। अमन को ही खुदा के वक्त होगा जो नबी के दरीजे पर होगा, और अमन वही कबूल होगा जो नबी की नैयत के मुताबिक होगा। अल्लाह के लिए, और ये बहुत हिम्मत की बात है। अल्लाह से रहमतुल्लाह अलैह मेवातों को आनंद की जगह अनपढ़ थे, पढ़े लिखी चीजें लगी थी, लेकिन उससे हमेशा तरजीह दी नहीं है, तरजीह दी नहीं है। मैंने सब बड़े मुश्किल होते हैं तरजीह दी है, और मेवा की तरजीह क्या समझे फिर समझा जाए कि जब भी करो अमन को पहले नहीं तो क्यों कर रहे हो? अल्लाह के लिए करवाओ। आप अंदाज भी सुना होगा एक जमाने में कि नीयत के बारे में हमेशा कुरानों की जुबानों से बात सुनी जाती थी कि भाई अमल से पहले नीयत करो, फिर अमल करते हुए नीयत दरमियान अमल दरमियानी अमल में नीयत की हिफाजत की मैं क्यों कर रहा हूं, और जब अमल कर चुको तो फिर सोचो कि मेरा नीयत ये अमल मेरी नीयत बराबर नहीं थी। अभी इसके फर्क कर सकते हैं कि अगर जैसी नीयत और जिस अल्लाह से हमें अमल करना चाहिए था हमने अमल नहीं किया जब वो फरमाया। ये हमारे मेहनत में ये जो वैसा कहा करते हैं कि अमल में रस्मियत नहीं आनी चाहिए, अमल में रस्मियत यही रस्मियत है। क्या अमल कर रहे हैं आदत के मुताबिक कर रहे हैं, उस अमल को अमल बनाने की फिक्र नहीं कर रहे। नीयत के जरिए हमारी अमल हमारा अमल मकबूल हो, इसके लिए हर इखलास की नीयत करें अमल से पहले, ये दरमियानी अमल में हमारी नीयत की हम इबादत भी करें। ये तमाम चीजें हैं दोस्तों जिंदगी में लाने की जरूरत है। हाँ वहां बाबा जो कहते हैं सच्चे थोड़ो ही नहीं है, फिरना नहीं है, फिरना किसी हदम मकसद के लिए है। हमारे मशरे हमारे पहुंचे किसी मकसद के लिए है। इसलिए भाई दोस्तों हमें भी बहुत प्रॉब्लम होने की जरूरत है। साहबा के लिए यही बहुत फिक्र की बात होती थी, साहबा की उम्र के बाद वो इसी फिक्र में रोते भी थे, इसी फिक्र में जाते थे। इसलिए भाई दोस्तों अमल की मकबूलियत बहुत जरूरी है, इसके लिए फिक्र करना मेहनत करना, और अपने जरिए हमारे आइंदा की हमारे जो साथी हैं इनमें ये चीजें मुंतकिल होनी चाहिए। इसके मुताबिक नहीं है हमारे अंदर, हमारे आप से उजागे खत्म हो चुकी है। अमल से पहले जो बातें पहले की जाती थी अब वो तो है नहीं, अब तो फिर चलो चलो तो फिर वो इस एक जमाने में वो फसले चले थे, दस के मौके पर सूरज भी चलता है, चांद भी चलता है, ये भी हरकत में है, वो भी हरकत में है, और फैशन भी हरकत है, उस पर हमारे घरों ने हमेशा टोक की है कि भाई ये फला से देख पर समझने की वजह छोड़ो, मोटी मोटी बातें हमने सुना तो रखो कि भाई जब हम बैठने क्यों जा रहे हैं, अब तीसरा भी जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं, जनता के रखने वाली मेहनत उम्र से जिंदा हो जाए इसके लिए हम जा रहे हैं, इसके बदल जाएंगे और उसके पैर बदल करके फिर बेचो समझा मुस्तकबिल जश पे जाए तो मुस्तकबिल की बात क्या करें और उसके क्यों करें, और साथ ही जश पे मुस्तकबिल के साथ रहे तो क्यों किस नीयत से रहे और किस 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 फिक्र के साथ रहे, और अमीर साहब का काम क्यों है क्या है कि तमाम आदाब का तस्कर बहुत कम हो गया। हाँ इसलिए जरूरत है। उन्होंने ग्रहण साहब की हर बयान में यही है कि भाई दावत की मेहनत का मकसद क्या है, व्यवहार की है और दीन अपनी तमाम सिफत सिफात के साथ आए। ये मेरे दोस्तों एक रिश्ते की बात है और इसको बहुत गुजरात में जाने की जरूरत है ताकि हमारा आनंद आगे कबूल बने अल्लाह के और अल्लाह के कबूलियत के साथ हम जाए। ईमान हमारे दिल में बढ़ रहा है बढ़ रहा है, इसकी आदमी तो हमारी जिंदगी भी है और हमारे अंदर के जज्बे क्या बढ़ रहे हैं। अगर हमने फिक्र आखिर घर बढ़ रही है और फिक्र आखिर बढ़ जा रहे हैं तो समझे कि हमारे ईमान में तरक्की हो रही है और हमारे अंदर फिक्र और जन कर रहे हैं। आज बहुत से काम आदमी आदत से करता है, आदत हो गई तो करता है, बहुत लोग आदत है रात भर जागने की तो पूरी रात जागते ही रहते हैं, आदत हो गई इबादत जो है वो जागते हैं। ऐसे मेरे भाई हमारा और तुम्हारा मामला है, इस अंदर आपको इसकी बहुत फिक्र होनी चाहिए और हमें और आपको अपनी मेहनत की बहुत हिफाजत करनी चाहिए। दावत की सभी मेहनत को हम हमारा जो व्यक्ति इबादत और अमन जरूर चीजें हैं और अमन जो है अमन इबादत भी और अमानत भी है। इबादत के माने उसमें अल्लाह से इंतजार करना चाहिए और अमानत से अमानत के माने क्या है कि जैसे इस अमन करने का तरीका है नदी के जरिए जिला है उस तरीके से उतारे करना चाहिए, उसके अपनी मर्जी पर नहीं होना चाहिए। इसका अमानत यहां है हमारे गांव से जाते हैं गश गश के मौके पर रात भी सूचते हैं कि दो नमाजों के दरमियान का वक्त पारित करके हमें वहां गश करना चाहिए। तो दो नमाजों के दरमियान का पारित होने के माने क्या है कि जहां गश करने का व्यय वहां पूरे की नमाज पर हो गई गश के बाद गश वहां मगरिब के बाद है तो मगरिब वहीं पढ़नी चाहिए और वहीं पढ़कर गश की जल्दी सुनना चाहिए, गज के मौके पर कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए और इशा तक हमारा गज जमकर हो इसकी भी करनी चाहिए। लेकिन आप साथ देखिए आदमी कौशलता के जरिए पड़ोस की मस्जिद में नमाज पढ़ के आता हूं पर उन्हें तो अपनी तकदीर को मदद दी, उन्हें अपने बुजुर्गों की मंशा के मुताबिक तूने अपने आप को नहीं चलाया। आप इसको समझा जाए सोचिए और अपने बारे में सोचिए कि मेरे दो हैं क्या मेरे अंदर अपनी गश्ती इतनी अजमत है कि ये गश्तों कहना बहुत आसान है रील की हड्डी है रील झलती है लेकिन क्या गश्त के मौके पर हर तकाजा है गश्त का उस मौके पर अलग बैठ के बात करना ये इसके माने है कि गश्त की कोई हमें तस्वीर समाज में नहीं है। कहते जरूर है ओम भी गए ओम भी गए और ओम भी गए की हड्डी है। ये बात है दोस्तों अभियों में जो पुराने थे उन्हें बड़ी अहमियत रखने की भाई हमारे भाई जनरल माँ मुझे थे एक मतलब एक घटना था एक शादी जा रहा था। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो भाई कहाँ जा रहे हो आलम में दीन फैलाने के लिए जा रहा और गेट पे जा रहा था मस्जिद के उम्री गश्ती में जा रहा था और उस आदमी को सर मुझे कहाँ जा रहे हो मैं आलम में हिदायत फैलाने जा रहा हूं। इतनी अद्भुत उम्री गश्ती उसके दिल में है। इसमें भाई सीधी बात वही है वे सबसे ज्यादा अगर कमजोरी है तो महावीर की कमजोरी है वो तो हमने पूछा कि इन सब पुराणों को इस भाई को कैसे होते हैं हमने कोई चीज पूछी नहीं कि भाई कमजोरी को शामिल लाने से फायदा क्या है लेकिन वो तो अंदाजा हो जाता है कि महीने की तीन दिन की जमातों के अवसर बहुत कम कम है और बहुत कमजोर है। गश्तों के बारे में दूसरे गश्तों के बारे में इतने सालों से मेरे दोस्तों सुझाया जा रहा है सुनाया जा रहा है कि भाई दूसरा व्यक्ति तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां काम न होता वहां जाके मेहनत को जिंदा करने के लिए जाओ। उसकी करती में बाधा सुना चुके हम कह दीजिए, लेकिन काबू में नहीं है वो काबू में नहीं है। महीने के तीन दिन हमारे लग रहे हैं, अपने बड़ों की मंशा के अंदर भी लग रहे हैं। हजरत माना मौना यमन साहब से पूछा गया कि आखिर तीन दिन की जमात कब निकले, मस्जिद से कब जाए तीन दिन की जमात। तो हजरत ने एक ही बात फरमाई कि तीन दिन की जमात मस्जिद से ऐसे वक्त में जाए कि जहां उसे जाना है वहां जाकर उस दिन के 24 घंटे के पूरे अमल हो। दिन भर का निजाम मशवरा है, मशवरा हो, खुसूसी कर, अमूमी कर, कि तमाम अमल पूरे हो ऐसे वक्त में तीन दिन की जमात को जाना चाहिए। अब आपसे देख लीजिए, मैं तो बोलते और उनसे हमेशा कहता हूं कि तुम्हारे तीन दिन नहीं लग रहे हैं, तुम्हारे तो ढाई दिन लग रहे हैं। हाँ, इसलिए जमात जाके 11 बजे 12 बजे मस्जिद से तो एक आधा दिन हो गया, तो चावल कम पूरे होंगे, और जब आवाज पूरे नहीं होंगे तो कैसे तकलीफ होगी। मौने इधर से बाहर कहते कि असल होटल क्या है, आमान है, आमान है, और आमान तो पूरे हो नहीं हो रहे तुम्हारे, और जब पूरे आमान नहीं हो रहे तो आप तबियत कैसे होगी। ये जो मेरे दोस्तों कुर्बानी में आगे बढ़ने के लिए आदमी का जज्बा हौसला बनता ही नहीं है, क्यों? और तो जितनी कुर्बानी सही नहीं से होगी उसके रह जाएंगे। इसी मेरे भाई बहुत फिक्र की बात है, हमारी मकामी मेहनत के बारे में बहुत कमजोरी है। हाँ, तो बहुत सी चीजें पूछने से आपस में हम लोग सोचने के लिए सातों सात कमजोरियां सामने आएंगी, लेकिन मामला यही है मेरे दोस्तों। यानी हल्कों की मस्जिदें 8 है और औसत औसत तीन दिन का पूछे तो 4 जमा जाती है, तो हर मस्जिद से जमा में कितने की कर रही है, और तीन दिन जमात कहीं भी कर रही तो उस मस्जिद की जो मौजूदा जमात के साथ उनकी नहीं लग रहे हैं, और वो क्या लगेगा सोचने की बात है दोस्त। हाँ, और हमको इसको मिलता अपने आप को सही नज, हमें पहले सही नज पर आना है। हम जिनके साथ चले हैं वो हमसे ज्यादा आगे उम्र की सारी उम्र में गए। इसी मेरे भाई आप बता से बड़ी गुजारिश है कि काम तो करने से होता है, बातों से नहीं होता। मुजाकर तो बहुत किए हमने और हर साल मुजाकर हो रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों जब काबुजारी सुनाई जाती है तो काबुजारी मेरे दोस्तों आप अपना कि जनवरी या जनवरी आएगा आइंदा मशरा होगा, उस मशरे में इतना निकला जाएगा गुज़िश्ता साल जवाबों की तादाद कितनी थी, इस साल कितनी बढ़ोतरी हुई, तो आपको अंदाजा होगा कि हमारी मेहनत ओडू की मेहनत की तरफ हो गई है। नए तबके पर मेहनत भी बहुत कमजोर हो चुकी है और नए तबके का फोरू भी बहुत कमजोर हो चुका है, और बहुत मेहनत की बात है। और ये बात साफ है जो ये हमारे बुजुर्ग जमाते हैं कि ईमान एक जगह फैलता नहीं है, या तो ईमान बढ़ेगा या ईमान नीचे आएगा। अगर मेहनत सही होगी तो ईमान में तरक्की होगी, अगर मेहनत सही नहीं होती है तो ईमान में दौर ही आता है। इसीलिए भाइयों हमारी जिंदगी होते हैं कि हमारी आखिर की जिक्र बड़ी है या घटी है, ये बड़ी सोचने की बात है। और ये जब हमेशा याद रखो दीन और हम चाहे पास है कुछ भी करें, लेकिन हम जैसा जो कर रहे हैं वही दूसरों मुंतकिल होगा। लिहाजा हमारा ये मजमा जो है ये अपने बारे में तो सोचे कि हमारी भाई हफ्ते के ओमों की दो बजे ये मेरे होने चाहिए, महीने के तीन दिन की पाबंदी मेरी होनी चाहिए, और तीन दिन जब हमारा वक्त कि तुम तीन और तकाजे खुशी दे देने वाले हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है, बहुत बहुत काम करने वाले हैं। और जनता कहते हैं एक जमाना था लोग बैठते नहीं थे, उनको खड़ा करना पड़ता था, ऐलान करना पड़ता, वही करना पड़ता था, अब तो सब समझते थे। और हमको भी कहते हैं कि भाई तुम आमान करो, नमाजों का एहतमाम करो, नवाफिल का एहतमाम करो, हमसे मानते नवाफिल का क्या एहतमाम करो। और साहबा की जिंदगी से समझाते हैं कि कुरान में साहबा को रुकान सुजदा कहा गया है, कि वो जितनी नमाजें पढ़ते होंगे, जितनी नमाज पढ़ते होंगे, जिसमें कुरान रुकान सुजदा कह रहा है। और हजूर साहब की जिंदगी क्या थी, हमने आप इसकी जल्दी जल्दी नमाजें क्यों पढ़ते थे, हमारे लिए था। और ये क्या है कि अंदर जब सही सही मेहनत होगी तो सही मेहनत से अंदर की कैफियत बदलेगी। और आदमी को आदमी की आदमी की मजबूत चीजें मेरे दोस्तों वो बदलेगी जो साहबा के हुजूर की मजबूत थी। हाँ, इसी मेरे भाई मेरे दिन को फिजर की बात है, जिंदगी पूरी हो रही है, सब मोटा की खड़ी हो जाए, अल्लाह ताला मौत से पहले पहले हमारे अंदर सच्ची पक्की तौबा सही करने की कोशिश नहीं, हमें भी तौबा करने की बहुत जरूरत है। अल्लाह के बारे में कहना तुमने कि अपनी मेहनत से हमें करने की कोशिश की, हम उसे गाकर भी हम माफ कर दें और हमें सही मेहनत करने की कोशिश बता फरमा दें। और मेरे दोस्तों मौत के पहले पहले अल्लाह से कहो कि ऐसा कारखा व्यवसाय फरमा, अल्लाह सुबह आदमी से हिफाजत फरमाने के पाए। हाँ, साहबा बहुत ही आखिरी घड़ियों तक इसी से करते थे मेरे भाई, इसलिए हमें फिक्र करने की जरूरत है और हम और संभलने की जरूरत है हम सबको, मैं हूं या आपको, हम सबको संभलने की जरूरत है। मौलाना मोहम्मद अली कहा करते थे कि एक मरतबा मैं हजर के कमरे में गया तो हजर लेते हुए रोए, और उस जमाने में हिंदुस्तान के हालात से जुड़े हुए थे मुसलमानों के बारे में असादा थे। तो जब मैं दाखिल हुआ हजर एकदम अपना ये ऊपर रोमान करके अपने आप को छुपा लिया, मैं तो देख लिया था अंदर जो है। तो फिर मैं रहने के बाद जब हुए थे मैंने खामोश लिखा सर कोई तकलीफ है आपको, आपको बेटर। तो हजरत ने कहा कि बड़े श्रीमान हजरत मनी मोहम्मद को बड़ी श्रीमान कर देते हैं, इनके इनके अब्बा श्रीमान थे, हजरत मोहम्मद बिन श्रीमान थे वो। तो हजरत ने कहा अरे भाई ये जो कुछ हो रहा है धीरे मेरे से हो रहा है, इस पर बोल रहा हूं उम्मत आजाद से जो गुजर रही है मेरे से बात सोचिए हमारे बड़ों की क्या, वो अपने आप को हर वक्त उसको अपने आप को करार दे रहे हैं। वाकई सर हम मेहनत नहीं कर रहे, उम्मत में भी जिंदा नहीं हो रहा, उम्मत की बेदीनी पर हालात आ रहे हैं, हमें और आपको हमें आपको ये हमारे सफर में ये पूछा करें कि मैं नमाज की शादा कितनी है। अच्छा हमें इसकी क्या फिक्र है, हमें इसका क्या भाव है, इसके बारे में हमने क्या अपनी मेहनत को बढ़ाया होगा। और नमाज का छोड़ना मामूली भी रहना, नमाज का छोड़ना तो हमारे कमाई नहीं, और पूरे सूबे में दोस्तों कहीं भी सौफी से नमाज बहुत 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 कम मस्जिदों में किसी इलाके वालों में होता है। और वरना 35% 50% अक्सर, अब ये तो 98% 90% ये जो मेरे दोस्तों तो किसी एक मस्जिद में है, उनको हमने अंदाजा लगा के पूछा था। वरना मेरे भाइयों हमारे पूरे सूबे में نماز جیسا آپ لوگ میرے دوستوں کو روکے ہو رہا ہے. 33%, کئی 5% نمازی, کیا 8% نمازی. اندازہ لگائیے اسی جگہ پر کہہ رہے ہیں ہماری ہمارے ایک مسجد 95% نمازی ہے, اور کم سے کم 5%, 8%, 20% ہے. تو اس کے بارے کیا ہے کہ ایک مسجد پر 95% ہے, لیکن باقی جتنی 50-100 مسجد اور بیچ بیچ میں ہیں اس کی تعداد کیا ہے؟ چھوٹی کی بات ہے, اور بہت چھوٹی کی بات ہے. اس میں بھائی جیسے اللہ کے لیے کریں اپنی محنت کو صحیح اوپر کریں گے. ہم پہلے اپنے آپ جمائیں اپنے بزرگ اور ان کی منشا کے مطابق ہمارے دو گز دو نمازوں کے درمیان کے بیچ کی وقت کے ساتھ ہم پاور بنے. کوئی آئے نہ آئے میں پاور بنوں پہلے اور سب کو لاؤں کہ بھائی سر ملتا ہے. ہمارا دوسرا دش بھی صحیح نہیں ہے. پہلے دش میں مقامی دش میں اگر میں دو سب آپشن سنتے تو 20-25-50-100 آدمی ہیں. دوسری دش میں کتنے ہیں؟ 2-4 آدمی, 5 آدمی, کہیں 10 آدمی, کہیں 20 آدمی, وہی کہیں. ورنہ دوسرے دشوں کو تو میرے دوستو دوسرے دش کی جو مقصد تھا ابھی وہ مقصد ہم نہیں آئے. یہ تمام محنت کو صحیح نہ پر لانے کی ضرورت ہے. زندگی کے جتنے بھی دن باقی ہیں اس کو میرے دوستوں اس فکر میں آ کر خود کو اس پر لانا اور اپنے ساتھیوں کو سبیاں بجا کر تربیت دے کر میرے دوستوں نے اس محنت کی طرف لانا. جوان طبقہ اس کو اگر ہم تھوڑا سا کھڑے کر لیں گے ایک صحیح محنت پر اپنے آپ کو لگا دے گا تو ہمارے مرنے کے بعد کام صحیح طرح سے چلے گا. ورنہ ہمارے ذریعے کام ابھی جس حالت پہ ہے ہمارے بعد والوں کے زمانے میں کیا ہوگا اور نہیں جیسا ویسا جانتا ہے. اسی میرے بھائی اور میرے دوست سے کافی میں بہتر گھر رہ جائے. تنظیمی مشورہ ہو رہا ہے, تنظیمی ہر ضلع کا مشورہ ہو رہا ہے. اس تنظیمی مشورے میں میرے دوستوں سے کام بانٹنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے پورے ضلع والوں میں جب آپ کرتے ہیں محنت کی صحیح سے آنے کی ترغیب دینا ہے, خود آنا ہے اور اس کے لیے دوستوں فکر کرنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کا فکر فرمائے.